صلی علی رسول الکریم محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تعالى في القران المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة للذكر أقم الصلاة نماز کو قائم کرو نماز کو کیوں قائم کرو کس وجہ کے لیے قائم کرو لی ذکری میری یاد کے لیے اقیم الصلاۃ لی ذکری نماز کو قائم کرو لیکن قائم کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بتا دی میری زبان میں آج تھوڑی سی تکلیف ہے اس لیے میری آواز میری بات کرنے سے زبان میں تکلیف ہوتی ہے نماز کو قائم کرو کیوں کرو میری یاد کے لیے اور دوسری جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بھائی کان کھول کر سن لو کہ اگر تم لوگ سکون چاہتے ہو اطمینان چاہتے ہو اطمینان قلب چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ کا یاد ہے. اگر کوئی شخص اطمینان چاہتا ہے ایک اطمینان ظاہری ہوتا ہے اور ایک اطمینان حقیقی ہوتا ہے. حقیقی اطمینان چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. اب اس کی وجہ ہے یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ مجموعی طور پر دو چیزوں کا بنا ہوا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور اس کی روح ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اصل جو چیز ہے وہ روح ہے, ہے کہ نہیں؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس روح کا گھر کون سا ہے. اس روح کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر چھتبل میں ہے, سورا میں ہے, دوسری دوسری جگہ میں ہے. ٹھیک, ہمارے جسم کا یہ گھر ہے, ہم اس کو بھی گھر کہتے ہیں. اگر کوئی شخص فرض کرے سعودی عرب میں ہے, کشمیر کا رہنے والا, یا امریکہ میں ہے اور اس کے پاس وہاں ہر چیز ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, सहजा है, राहत की चीजें हैं, लेकिन अंदर दिल में उसको एक एहसास अजनबियत भी है कि मैं यहां का नहीं हूं। उसके अंदर एक वो दिल के अंदर बजायर वो खूब कर्म में घूमता है और दूसरे जो वहां ऐशो इशरत की चीजें हैं उनसे भी लुत्फानंदोज होने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर दिल के खाने अंदरून में उसको एक एहसास अजनबियत है कि मैं यहां का नहीं हूं, और इतनी चीजें भी उसको वो एहसास अजनबियत उसे दूर नहीं करती। इसी तरह से ये जो रूह है इंसानी है, इंसान की रूह है, आवाज आ रही है सर, पीछे आवाज आ रही, ये जिसमें ये रखी हुई है इस दुनिया में, ये इसका घर नहीं, इसका घर नहीं। हर इंसान दुनिया में चाहे वो कितने ही इन्हें दुनियावी चीजों का मालिक हो, लेकिन उसके अंदर अगर झांक कर देखेंगे उसमें भी ये एहसास अजनबियत है कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है। कोई भी होगा, किसी भी मजहब का होगा, क्यों, जो उसकी रूह है वो जिस जिस्म में है वो जिस्म उसका घर नहीं है, और वो एक किसी इंसान में ये एहसास शौरी तौर पर होता है, यानी उसको महसूस करता है, और बाकी में ये जिसको आप कहेंगे सबकॉन्शियस लेवल में है या गैर शौर में है, लेकिन ये एहसास अजनबी को जरूर होगा। अब इसके बाद अगर ये शख्स कश्मीर का रहने वाला सऊदी अरब में होगा या कि अमेरिका में होगा या लंदन में होगा, अब किसी वक्त अचानक उसके कानों में कश्मीरी जो यहां का हमारा रिवायती जिसको हम वनमून कहते हैं, रुख कहते हैं, या इस किस्म की आवाज इसके कानों में, इसको एक अजीब किस्म का लुत्फ आता। बहुत मुद्दत के बाद मैंने अपने वतन की बात सुनी, इतना ही छोड़ो आप कि उसको रोक लिया मानूम, अगर इसको बहुत मुद्दत के साथ कोई कश्मीरी मिलता है और वो उसको अपनी जबान में बात करता है, इसका एक अजीब लुत्फन उसमें महसूस होता है, उसको फिर दावत करता है अब मेरे पास आओ। और आपको शायद इस बात का यकीन नहीं आएगा कि लंदन, अमरीका और दूसरी जगहों पर जो कश्मीरी रहने वाले हैं और जो बड़ी दावत वो करेंगे, वो कहेंगे मेरे यहां नून चाय पियो आप, ये बड़ी दावत मानी जाएगी वहां पर, नमकीन चाय, और अगर साग होगा यहां से लिया हुआ या नदरू तो ये और भी बढ़िया दावत होगी। वहां वो उनको किसी बड़े रेस्टोरेंट की दावत वो इतना लज्जत नहीं आएगा या निंचाय प्याला चावल इसी निंचाय दिवस में दूसरी ओतरे नफर आम चावल निंचाय। अब ये इसको अपने वतन की याद दिलाता है और उस वतन की याद में वो लज्जत है, वो निंचाय में लज्जत नहीं है। उस वतन की याद में वो लज्जत है। इसी तरह से रूह इंसानी का वतन क्या है ये देखना है। हम में से शायद किसी को ये यकीन नहीं है होगा और न ये हकीकत कि ये रूह इंसानी का घर यही जिसम है, कोई हाजरीन में इस बात को मानता है, कोई मुझे मानता होगा कि ये रूह इंसानी इस ये जिसम इसका घर है, असली है, वतन असली है, ऐसा तो नहीं कोई कहेगा, तो वह इसका ये घर नहीं है तो देखना पड़ेगा इसका घर कौन सा है, इसका वतन असली कौन सा है, अब फिर गौर जब इंसान करेगा और कुरान हदीस की रोशनी में देखेगा कि ये रूह जब इस इंसान के इस जिस्म में इस पिंजरे में आने से पहले आलम अरवाह में थी, आलम अरवाह में थी और वहां ये क्या कर रहे थे, ये हमारी अरवाह रूह की जमा अरवाह, और ये रूह जो है हमारी वहां क्या करती थी, जाहिर है कि ये मुशाहदे हक में थी, तो रूह हमारी कहां थी, हक ताला के हुजूर उसके मुशाहदे में थी, तो मालूम हो जाएगा इसका वतन वहां है, इसका वतन ये नहीं, इसका वतन मुशाहदे हक है। अब अगर कोई शख्स, अब वो लंदन या न्यूयॉर्क या सऊदी में रहने वाला अपने वतन की बात सुनता है तो उसको एक कैफियत सरकारी हो जाती है, एक लज्जत आ जाती है। इसी तरह से ये रूह इंसानी जब इसको अल्लाह का जिक्र किसी भी तरीके से अल्लाह का कि ये मुशाहदे हक में थी, अब जब वो चीज इस बंदे के जरिए इस तक पहुंचती है, अब ये इसको भी अपना वतन याद आता है। अब अगर ज्यादा किया तो इस पर एक वजदानी कैफियत आरी हो जाती है, अपने वतन की याद में ये मस्त हो जाती है और जो सरूर उसको उस याद में आता है, अगर इसको आप मुर्गी को सोना दे दो, रुपया दे दो, चांदी दे दो, डॉलर दे दो, तेरे जवाहरात दे दो, तो भूखी मर जाएगी। और उसको चंद दाने मक्की के दे दो, चंद दाने चावल के दे दो, पेट भर कर आराम करेगी, परवा भी हो जाएगी और आराम भी करेगी, है कि नहीं। आप फिर एक मुर्गी घर में है, ऐसे मोहब्बत करो, अब सोने के पौंड उसको लगा दो, चांदी के लगा दो, डायमंड के लगा दो, तो ये बड़ा कीमती है, मुझे अपनी मुर्गी से बड़ी मोहब्बत है और मैं इसको क्या मक्खी दे दूंगा 10 रुपये किलो, मैं तो भाई 1 करोड़ रुपये का ये देता हूं, बेचारी मुर्गी मर जाएगी नहीं मर जाएगी है? और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तब उसको दाना कहेंगे या बेवकूफ, एक मुर्गी को बजाय मक्की के जऊ या चावल या जो भी वो खाती है तो उसके बजाय उसको आप सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, अब उस शख्स को क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, तो सब उसको बेवकूफ कहेंगे और खुद अपने आप को क्या कहेंगे कि रूह की जो गजा है, रूह की जो गजा है उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए आता है कि मोमिन का शैतान जो है वो बड़ा कमजोर नहीं दुबला पतला होता है और फासिक फाजिर और दूसरों का जो शैतान जो उनके साथ शैतान लगा है वो बड़ा मोटा होता है, बड़ा ताकतवर होता है, क्यों, उसको गजा मिल रही है और रूह को गजा नहीं मिल रही है। और मोमिन के यहां इसका उल्टा होता है, इबलीस को गजा नहीं मिल रही है, उसको गजा मिल रही है। अब यहां पर इबलीस कमजोर हो गया और रूह क्या हो गई, ताकतवर हो गई, अब रूहानियत गालिब आ गई शैतानियत पर, रूहानियत गालिब आ गई। आप लोगों ने सुना होगा कि फलां बुजुर्ग पानी पर से दरिया पर से चल कर चला गया, हवा में से उड़ गया,
ऐसी ऐसी चीजें की
सुने ना। और आप लोगों को ये पता, ये आप सोचते होंगे कि ये या तो मुश्किल है या नामुमकिन है, या बड़ी मुश्किल से जहन उसको कबूल करता है, और या हमारे बहुत से ज्यादातर हजरात मौजूद हैं, उनके लिए तो आसान समझना होता कि अगर जिस चीज की जो खासियत है, प्रॉपर्टी है, अगर वो गालिब आ जाएगी तो आपको काम करेगी। अब अगर जिस शख्स में रूहानियत गालिब है, रूह क्या चीज है? रूह क्या चीज है? रूह गैर मादी चीज है, मादी चीज नहीं है, रूह गैर मादी चीज है, बड़ी लतीफ है। लतीफ समझते हो? लुत्फ वाली नहीं, लतीफ, फाइन। हाँ, यानी ये हमारी नजर जो है ये मादी है, ये हमारी नजर, और एक मादी चीज ये दीवार ने उसको रोक लिया। अभी आजकल अखबारों में आता है कि अमरीकी फौज जो इराक में गई है वो ऐसे गॉगल्स लगाती है कि जो इंसान के जिस्म के कपड़ों को चीर कर, यानी इंसान के जिस्म के ऊपर बदन पर जो कपड़े हैं वो उसको आड़ नहीं बनते, उससे उनको चीर कर उनके बदन को पूरा देख लेते हैं। यानी उनके गॉगल्स जो हैं, अगर कोई शख्स उनके सामने है, पूरा ऊपर से बुरका सारा लगाया है, सारे कपड़े लगाए हैं, लेकिन उस शख्स के सामने वो गोया नंगा है, कि उसकी शुआएं जो है, उस जो उनका ऐनक है, उसकी जो शुआएं हैं, जो किरणें हैं, वो इन कपड़ों को पेनेट्रेट करती है, यानी इनके अंदर चली जाती है, ये उनको रोक नहीं सकते। नहीं जी, ये आजकल शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अब इससे अब आया है कि अब अमरीकी को इराकियों को रोक रोक कर कहते जरा आप भी ये गागर लगाओ, देखो हम ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर ये बड़ी खबर चली है और उनके पास ऐसी भी गागर है कि रात को बिल्कुल देखेंगे जैसे दिन में देखते हैं। ये मादी चीजों के साथ ये मुमकिन है, मादी चीजों के साथ। अब आपको एक ये जो इसको ये क्या कहते हैं, रोशनी लाइट, इसकी एक हद होती है, फिर इसमें क्या क्या होता है, अल्ट्रा स्पेक्ट्रम, इंफ्रा, ये सारी चीजें। अब वो अल्ट्रा वायलेट या जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको ये दीवार नहीं रोकेगी। अल्ट्रासोनिक रेज वो इसको आपके वो बीटा इलेक्ट्रॉन गामा रेज पेनिट्रेट करती है, नहीं करती है? एक्स रे से ज्यादा उनकी पेनिट्रेशन कुवत है कि नहीं है? अब आपके मादी चीजों में ऐसी कुवत है तो जो गैर मादी चीज है तो उसमें कितनी कुवत होगी? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे अपने दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आया दरबार में, दाखिल हुआ। दरबार क्या होता था, उनकी मजलिस में दाखिल हुआ तो सलाम किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आपकी आंखों से जिना टपक रहा, और वो शख्स हैरान हो गया, वो क्या अस्तग़फिरुल्लाह, क्या अभी वहाई उतरती है, क्या अभी भी वहाई उतरती है? अब इस शख्स ने बाहर किसी गैर महरम को देखा था, ये जो अंदर आया इस शख्स ने तो हजरत कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं, अंदर दीवारें हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा वाही का सिलसिला तो तब का बंद हुआ हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से नकल कर जाने के बाद, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि तपू फिरासत अल मोमिन फैन्नहू यंजुरु बिनूरिल्लाह। भाई मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन की फरासत से कि ये अल्लाह के नूर से देखता है। अब ये आपके गामा रेंज में, बीटा रेंज में और इनमें इतनी कुवत है कि ये इन चीजों को पेनेट्रेट करेंगे। अब जो नूर नूरला होगा, अब उसकी कुवत पेनेट्रेशन और कुवत हद कितनी होगी? मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? यानी आजकल के इसमें ये चीजें समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, और इनको साबित करना भी आसान है और समझना भी आसान है। और इस चीज से ईमान और मजबूत हो जाता है। जैसे एक शख्स ने लिखा, आजकल तो ये क्या कभी कोई हवा चलती है ना, और साइंस की हवा चली है। एक शख्स ने लिखा मजमून कयामत की, किसी को सब कयामत, कुछ लोगों ने पढ़ी है उनकी कयामत पढ़ी है ये पढ़ी, किसी के साथ डे ऑफ जजमेंट वो निकला था ट्रूथ में भी। अब उसने कहा कुछ नहीं करना है, ये सारा सिंपल एबीसी है फिजिक्स का, क्या करना है? टाइम और ग्रेविटी को रिवर्स होना है, टाइम और ग्रेविटी को। अब टाइम आगे चलता है इसको पीछे पीछे चलेगा, और ग्रेविटी सबको रोके हुए है और ग्रेविटी रिवर्स हो जाएगी और जमीन जो अंदर इसके है सारा ऊपर तो उगल देगी। अगर ग्रेविटी रिवर्स हो गई अब सारा अब जो भी फेंको जमीन के ऊपर पड़ता है, अगर रिवर्स हो गई तो सबको उगल देगी, सबको फेंक देगी। अब अल्लाह ताला कादिर है, वो कैसे करेंगे तो हमको मालूम नहीं है, न किसी को मालूम है, न कोई अंदाजा कर सकता है अल्लाह ताला को क्या काम कैसे करेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक सिंपल सा कहा, ये तो बिल्कुल एबीसी फिजिक्स है, कुछ नहीं करना है, टाइम को रिवर्स होना है, ग्रेविटी को रिवर्स होना है, कि हर चीज जमीन अपने अंदर कशिश करेगी, अब कशिश खत्म होगी क्या होगा? वही जल अर्ज वो अलकत माफीहा वो तखल्लत, ये जिस योगी इसके अंदर है सब उगलकर फेंक देगी और खाली हो जाएगी। वो अलकत माफीहा वो तखल्लत। अभी कहते ये बिल्कुल आसान समझना है, ये मैं नहीं कहता हूं कि इसी तरह होगा। अल्लाह ताला के यानी इख्तियार अल्लाह ताला की ताकत और उसकी मशीयत, वो हमारे जहन से गुमान से सबसे बड़ातर। लेकिन आज की इस्तलाहात में कि ये भी एक चीज, अब टाइम जब रिवर्स होगा तो आप अपनी जिंदगी पूरी देख लेंगे। आज के साइंस में भी ये बात चल रही है कि जो भी दुनिया में हुआ है वो सारा इस टाइम में महफूज है, हर चीज रिकॉर्डेड है, आवाजें रिकॉर्डेड है, दूसरी चीजें रिकॉर्डेड है, सब इसमें रिकॉर्डेड है। अब अगर आप इसी को रिवाइंड करके चलाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को पूरी देखेंगे, वहां कोई और चीज कथा विनफ्सी का तो क्या करता है तुम अपने आप को हिसाब लेने के लिए आप काफी हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप अपने आप का हिसाब लेने के लिए आप अब वो सारा देख लेगा और किस किस का इंकार करेगा, तो वो सारी इसकी जिंदगी उसके सामने होगी तो किस चीज का इंकार करेगा? किसी चीज का इंकार नहीं कर सकता, यानी ये सारा इसमें रिकॉर्डेड है। तो गैरस ये कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला जब बैठे थे तो शख्स आया, अब उसने कहा कि क्या अभी वही आती है? और अंदर बैठे आपको कैसे मालूम हुआ? कहा गया तुमने नहीं सुना कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी फिरासत से बचो कि ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उनकी ये कुव्वत नूरानियत और इनकी वो नजर में उनकी ये नजर जो है ये इस मादी जिस्म की नहीं होती है, इन जिनको आप कहते हैं बसारत, इन आंखों का देखना, ये रूह को गिजा देने से और रूह में जब जान आती है तो ये रूह काम करती है। आपके मादी चीजों में जब उनमें फैमस आती है तो वो ऐसा काम करते हैं, और जो रूह काम करेगी तो उसका आप कितना अंदाजा कर सकते, इसलिए ये सारी मिसालें मैंने बता दी। इन्हें इन चीजों को अजीब समझना या इन चीजों को नामुमकिन समझना, ये मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आप इनको इस तरीके से भी आजकल की इस्तिलाहत इनका भी इनको साबित कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? अब ये जो पानी से चल रहा है, अब ये रूह जब इसके अंदर रूहानियत गालिब है, इसके अंदर रूहानियत जो रूह है इसका वजन नहीं होता, उसको ग्रेविटी अपने तौर से कशिश नहीं करेगी और उसमें वजन नहीं होगा तो ऊपर वो डूब जाएगा या नीचे गिर जाएगा। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब इसने अपनी रूह को गिजा दी। अब हमने उस शख्स को बेवकूफ समझा जिसने मुर्गी को सोना चांदी दे दिया और खुद हम अपनी रूह को जा देते हैं, खुद हम अपनी रूह को क्या देते हैं? इसको भी हम सोना चांदी रुपया देते हैं और जो इसको चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा। अब मुर्गी को मक्की चाहिए थी, उसको नहीं मिली, भूखी मर गई। यहां ये कहते थे उसको बीच में मैं लतीफे के तौर पर बोलता हूं, यहां निजामुद्दीन ने दिल्ली में जहां मरकज है तबली का, निजामुद्दीन ने वहां एक भिखारन थी, वो भूखी मर गई, भूखे मर गई, लेकिन जेब में उसके निकले 900 रुपये। वकील इतनी थी, मरना जान देना तो उसको मंजूर था लेकिन पैसे खर्च नहीं किए। इसी तरह से हम लोग हैं कि हम रूहानी मौत चाहे उसके लिए तैयार हैं लेकिन उसको गजा देने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए अब ये इसको इसकी गजा सिर्फ क्या है? अला बिजिक्र अल्लाह तत्वइन करो, इसकी गजा यही है। इसी को हमारे कश्मीरी वलीउल्लाह हज़रत नूरुद्दीन अली रहमा ने फरमाया, दिल से गाड, दिल से हकम व थाब, जिक्र हिंद कौन दिल लसी तवाई। आप समझो ये दिल आता है ये एक मछली जैसा, अब मछली तब तक जिंदा है जब तक पानी में, अब पानी से बाहर निकालो तो इसकी मौत आ गई। तो इसी तरह पलक तुम्हारा जो है ये मछली जैसा है और इसके लिए पानी अल्लाह का जिक्र है, तो अगर आप उसको ये नहीं दे रहे हैं तो गोया कि ये उस मछली की तरह जो बेपानी के मर जाती है, इसी तरह से तुम्हारा पलक भी क्या हो जाएगा? फौत हो जाएगा। दिल छि गाट सौखे में उठाओ जिक्र कौन जिस लसी का, और यहां फरमाया कि नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। तो यहां आए थे, तबलीग वालों का जलसा हुआ था और मौलाना उमर साहब ने उनके दर्जात बुलंद करा, तो एक बात मुझे उनकी याद है, वो तो बहुत तीन तीन चार चार पांच पांच घंटे बयान करते थे, लेकिन एक याद मुझे ईदगाह में जो बयान किया था, कहा कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि अगर घाय को देखेंगे तो अल्लाह याद आता है। अब घाय को देखा, अब उसमें अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा किया, अब घाय को देखकर क्या होता है, अल्लाह याद होता है। और हमें नमाज में घाय याद आती है, फरमाया वो ऐसे हैं अगर वो बाहर घाय देखेंगे तो वहां अल्लाह याद आएगा, और हम ऐसे हैं कि अल्लाह को नमाज को शुरू करते हैं तो वहां घाय याद आती है। और लिजिगरी खलास, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। और असल में ये याद जो है, अल्लाह को याद करना, ये बंदे का यानी क्या है, ये रूह की गजा है। समझी कि ये रूह मुशाहदा हक में रहे। अब मुशाहदा क्या होता है, अब याद जिक्र जो होता है सिर्फ जबानी नहीं होता, तो कहते जिक्र लिसानी, हमेशा जबान से जिक्र करना मुमकिन नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, एक शख्स अपना दुकान का काम कर रहा है, एक शख्स लिख रहा है, एक शख्स और काम कर रहा है, तो हर वक्त इसकी जबान पर जिक्र है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका दिल, इस दिल में ये अल्लाह की याद जम जाए, इसका दिल कभी एक लम्हे के लिए भी उसकी याद से खाली न रहे, ये है काम। जिक्र निशानी हर वक्त मुमकिन नहीं है, न ये मुमकिन है कि एक शख्स 24 घंटे तिलावत करता रहे, न ये मुमकिन है कि 24 घंटे वो नमाज पढ़ता रहे, और न ये मुमकिन है कि 24 घंटे जिक्र निशानी उसे जारी हो। अब सबक पढ़ रहा है, सबक सुना रहा है, या किसी से मामला कर रहा है, वक्त तो जबान दूसरा काम करती है, जिक्र तो नहीं करती। तो लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान इसके दिल में जम जाए कि हर वक्त अपने आप को अल्लाह के हजूर, अल्लाह के सामने पाए, और अल्लाह ताला इसका कल्ब हमेशा, जिसे कहते हैं कि आपने गांव की लड़कियां या औरतों को देखा होगा कि उनके सर पर पानी का घड़ा होता है भरा हुआ, और रास्ते चलती है और दो तीन सहेलियां हैं, आपस में बातें करती हैं आपस में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं जरा बताओ किसी भी वक्त ये लड़की, क्या इसका दिल इस घड़े से कभी भी गैर मुतवजा होता है, अगर ये दूसरे से बातें करती, यानी इसका दिल अटका हुआ है कि ये घड़ा न गिर जाए, और पैर चल रहे हैं, हाथ दूसरे काम कर रहे हैं और जबान दूसरे से बातें कर रही है, बजायर तवज्जा उसको और तरफ है, लेकिन इसका कल्ब, इसका दिल किसके साथ जुड़ा हुआ है, घड़ा न गिर जाए। यही मोमिन का हाल होता है कि बजायर और काम करता है, बजायर और काम करता है मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन इसका कल्ब जो है वो होना चाहिए अल्लाह के किस्मत। इसी को कहते हैं ध्यान, इसी को कहते हैं याददाश्त। क्या कहते ध्यान और याददाश्त, इसी की बुजुर्गों के यहां मशक कराई जाती है, इसीलिए बुजुर्गों के यहां मशक कराई जाती है ताकि ये ध्यान इसके दिल में रासिख हो जाए। ध्यान अब किसी को एहतिकाम में रखते हैं, वहां एहतिकाम में क्या करेगा, साल भर एहतिकाम में रहेगा, वहां एहतिकाम में ये एक मशक करेगा और अपने कल्ब को, रूह को किसी चीज का आदि बनाएगा ताकि ये बाहर निकलकर ऐसा रहे, यही एहतिकाम करने वाला सिर्फ 10 दिन के लिए। इसी तरह से बुजुर्गों के यहां जो तालीम होती है, उस तालीम का भी मकसद ये होता है कि ये मशाक बन जाए, मशाक समझते हो, यानी ये काफी मशक करे और ऐसी मशक करे कि ये जब इसको बाजार में हमारे حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ جلال آباد مظفر نگر یو پی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ریموٹ مطلب اسمولا گاؤں، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں باہر ہونا کہ انسان کو کیا کرے، کشش کرے، اٹریکٹ کرے توجہ. وہ فرماتے تھے بھائی جلال آباد میں تم لوگ یادداشت میں، ذکر میں، اس میں، اس میں رہتے ہو، یہ کوئی بڑا کمال نہیں. جب آپ دلی جاؤ، لندن جاؤ، مانچسٹر جاؤ، نیو یارک جاؤ، کشمیر جاؤ، ان بازاروں میں آپ کی یہ کیفیت ہے، وہ ہے. یہاں پر رہنا، یہاں تو عورت ہی نظر نہیں آئے گی تو آپ کس کو دیکھو گے. تو یہاں یہ کہنا کہ میں بڑا متقی ہوں، متقی تو تب ہے جب ویسے آپ کے ماحول اس ماحول میں آتے ہیں. لیکن اگر اللہ کا دھیان راسخ ہو گیا ہے، اسی لیے بزرگوں کے ہاں وہ جو تعلیم ہوتی ہے کہ اس کو مشق کرائی جاتی ہے، اور ایسی مشق کرائی جاتی ہے، ایسی مشق کرائی جاتی ہے کہ ہمارے کشمیری میں یہاں کہتے ہیں، اب آپ لوگوں کو کشمیری سے تو مناسبت نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ہے، میں زیر روس اس پر زیر بوں گا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کشمیری سے مناسبت کہ اس کا قلب خود جاری ہو جائے. تو اصل میں بات ذہن میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی اقیم الصلاۃ للذکر، کہ آپ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اب ہمارے نماز میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کا دن کیسا گزرتا ہے، اور ہم لوگوں کے اوقات کیسے گزرتے ہیں، ہم دن بہ دن دین میں کتنی ترقی کرتے ہیں. ترقی تو درکنار، ہمارا تنزل کس تیزی سے ہو رہا ہے، ترقی تو درکنار. اگر اپنے ہی ڈگر پر رہتے وہ بھی کوئی کمال تھا. ایک شخص نے لکھا رتھانی رحمت اللہ علیہ کو کہ میرا کبھی ایمان ایسا بہت کبھی ہوتا ہے پھر میں کمزور ہوں، پھر کبھی ہو جاتا پھر کمزور. حضرت نے فرمایا یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ اس میں کبھی اوپر کبھی نیچے، اگر نیچے ہی رہ گیا اوپر نہیں آیا. تو ابھی جو ابتدا میں جو اس کو جو مبتدی کہتے ہیں کہ اب اس کو جذبہ آیا، کام کرنا شروع ہو گیا، بیٹری چارج ہو گئی، کسی مجلس میں گیا یا کوئی کتاب پڑھی یا کسی کی دعا لگ گئی تو بہت کام کرنے لگا، اب پھر بیٹری کو پھر ڈاؤن، اب اس کو پھر ریچارج کی ضرورت، اب یہ ریچارج نہیں کرے گا تو خلاص. یہ بالکل ایمان کی کیفیت اسی بیٹری کی ہے، چارج کی تو بڑا جوش ہے جیسے، اور پھر صحبت سے دور ہو گیا پھر ڈاؤن. اب شیطان، آج کل اتنا شیطانی ماحول ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرو. اتنا شر غالب ہے، ابلیسیت غالب ہے، شیطنیت غالب ہے، تو اگر یہ کسی جگہ سے تو ان جگہوں کو آپ بمثل کشتے نوح سمجھو کہ جو اس میں گیا تو وہی بچ گیا، باقی سارے گھر. آج کل کا حالات ایسے ہیں، اور ابلیس اتنا رگ رگ میں کیا ہے رچ گیا ہے، بچنا بڑا مشکل ہے. اب اس بیٹری کو بار بار چارج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا یہ ماحول، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ کس چیز میں رہتے ہیں اور کیسی چیزیں غالب ہیں، اور ابلیس کیا کیا اندر سے کرتا ہے، اور ایسے ایسے. پر ایک چیز یاد رکھو، کہ دل میں کیسے ہی برے خیالات آئیں، کیسے ہی چاہے وہ کفر ہو، اور کسی قسم کے بھی آئیں، تو بالکل فکر کی کوئی ضرورت نہیں. भैया ये क्या कहा डॉक्टर साहब, हमें कुफर के ख्यालात आए, बड़े बुरे बुरे ख्यालात आए, हमें फिक्र न हो। सबसे अकमल ईमान अंबिया के बाद किनका था? सहाबा को। ये तो उनको भी आते थे, ये उनको भी आते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हलाक हो गए, तबाह हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, कि हमें ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। अब देखो कितने बुरे ख्यालात, खुद अंदाजा करो, सहाबी के अल्फाज सुनो, खुद अंदाजा करो। फरमाया कि इतने बुरे हैं कि हम जलकर कोयला बनना पसंद करेंगे लेकिन जबान पर हम नहीं ला सकते। कोयला बनकर जलना हम पसंद करेंगे, अब हम खुद समझते हैं वो कितने बुरे ख्याल होंगे। और वहां से क्या जवाब था? अल्लाहु अकबर। तो फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, अरे ये तो ईमान है, ये कैसे ईमान है? फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये कैसे ईमान है? अब ये बुरे ख्याल के आने से जलना पसंद करते हैं, ये क्यों पसंद करते हैं? कि ईमान अंदर मौजूद, जरा काफिर को अगर ख्याल बुरा आया क्या वो जलना पसंद करेगा, क्या वो जबान पर नहीं लाएगा? अब ये इसको इतना बुरा समझता है, क्यों बुरा समझता है? जो अंदर ईमान, अंदर ईमान ही की वजह से वो बुरा समझता है। असल में इसका ईमान ही इन ख्याल को बुरा समझ रहा है, गोया कि ईमान मौजूद है। एक मसला ये हो गया। दूसरा ये बात समझ में आ गई कि कमाल ईमान के ये ख्यालात आना कमाल ईमान के खिलाफ नहीं है, फिर सहाबा को नहीं आते, क्योंकि हम उनसे ऊपर का दर्जा हमें कभी नहीं मिल सकता, यानी वो तो नामुमकिन है। तो उनके कमाल ईमान में इन ख्यालात के आने से, अब आप कहेंगे तो ये कैसी चीज हो गई, इतने बुरे बुरे ख्यालात आ जाएं कमाल ईमान के खिलाफ ना हो, ये कैसे हो सकता? ये तो बिल्कुल सादी सी, क्योंकि ये जो हमारा दीन है ये बिल्कुल फितरी दीन है, यहां नौजबिल्ला अल्लाह ताला जालिम नहीं, ये बिल्कुल क्या है, फितरी दीन है। वो कैसे? अब एक शख्स के दिल में ख्याल आया, अब ये ख्याल आना इसके इख्तियार में नहीं है, अब इसको सजा क्यों मिलेगी बेचारे? तो गैर इख्तियारी चीज है, अब इसे लाया नहीं, इसको आया ख्याल, खुद में ही लाया, और जो सजा मिलेगी वो इख्तियारी एमाल पर मिलेगी, जो सजा मिलेगी वो इख्तियारी एमाल पर मिलेगी, गैर इख्तियारी पर कुछ नहीं। अब ये अमल गैर इख्तियारी या इख्तियारी? तो इसको पकड़ क्यों होगी? इसलिए एक छोटा सा जुमला है कि इन ख्यालात का आना कोई परेशानी की बात नहीं, हाल लान आना चाहिए, आने और लाने में बड़ा फर्क। इन ख्यालात का आना, आए तो आए, कैसे ही आए लेकिन खुद न लाए, लाना क्या है? इख्तियारी है, पकड़ हो जी। अब आ गए, अब इख्तियार से उन पर सोचता है, अब ये इख्तियारी है, हा? कोई आया ख्याल, किसी लड़की का ख्याल या कुछ, अब खुद मजे ले रहा है, अब ये इख्तियारी है, ये चीज इख्तियारी है। पहले जो आया था ये गैर इख्तियारी था, इसकी अब इसका इलाज क्या होगा? कि हमें बड़े बड़े बुरे ख्याल आते हैं, अब हम कह डॉक्टर साहब मैं बहुत कुछ लड़ाई करता हूं अपने के साथ इनको निकालने की, अरे ये कहां से निकलेंगे? जितना निकालने की कोशिश करोगे और आ जाएंगे, ये हवा की तरह है। अब हवा एक बर्तन में, यहां से निकालो यहां से घुसेगी, यहां से निकालो यहां से घुसेगी, निकलेगी नहीं, फिर क्या होगा? तब मैं तो बहुत लड़ाई करता हूं इन ख्यालात के साथ और फिर बड़ा परेशान हो जाता हूं, फिर कभी इसी में मेरी नमाज भी गई, अब देखो मुझे क्या हो गया, मुझे ये ख्यालात। अब इंसान ये समझता है कि मैं फिरिश्ता होना चाहिए, मुझे कोई बुरा ख्याल ना आना चाहिए। अरे तू इंसान है तो फिरिश्ता कैसे? अगर फिरिश्ता है तो सवाब किसे मिलेगा तुझको? अगर तू फिरिश्ता बनेगा तो सवाब कहां से मिलेगा? सवाब तो मिलेगा इंसान को, सवाब मिलता है इंसान को जो अमल करता है इख्तियार के साथ। अब फरिश्ता चाहिए भी तो गुनाह नहीं कर सकता, अगर फरिश्ता चाहिए भी गुनाह नहीं कर सकता या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इंसान का वो अमल जो इख्तियारी है उस पर जजा भी होगी। यहां एक और मसला, एक शख्स आया अल्लाहु अकबर और नमाज शुरू की और ऐसी कैफियत हो गई मस्त हो गया। अब कैसी कैफियत है? यानी अब ये नमाज में इसको दुनिया माफिया की खबर नहीं, नमाज में पूरा बहुत महमूद कैफियत है, यानी अच्छी कैफियत है इस शख्स के लिए कि ये अब इसमें। लेकिन याद रखो इसका सवाब का मीटर रुका हुआ है, इसका सवाब का मीटर रुका हुआ है। क्यों? सवाब मिलेगा इख्तियारी अमल पर, ये इस वक्त अपने इख्तियार में है नहीं, ये शख्स अपने इख्तियार में नहीं है, अगरचे अच्छी कैफियत में है लेकिन अपने इख्तियार में इसके सवाब का मीटर रुक चुका है। अब इसकी दलील है हदीस शरीफ में, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स कुरान पढ़ता है और आसानी के साथ पढ़ता है रवानी के, उसको एक सवाब मिलेगा, कितना मिलेगा? और एक शख्स कुरान पढ़ता है अटकता है बेचारा पढ़ नहीं सकता है मुश्किल है, अब उसको 200 सवाब मिलेंगे। अब क्यों 200 सवाब मिलेंगे? वो तो अच्छा पढ़ता है, अब उसको पढ़ने में तकलीफ नहीं है, इसको एक पढ़ने का सवाब और जो मुश्किल हो रही है और मुश्किल पर सब्र करता है उसका दूसरा सवाब मिलेगा। तो मालूम यह हो जाएगा कि जो शख्स नमाज शुरू करता है, अब ख्याल आया फिर वापस लाने की कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह तो ख्याल गया फिर वापस, फिर ख्याल फिर वापस, अब इस कश्म के, और जितना ये ज्यादा होगा उतना उसकी नमाज में ज्यादा सवाब मिलेगा। और खुद हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नमाज में वो बच्चों के रोने की आवाज सुनते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा कल्ब मुबारक चाहता है कि मैं नमाज को यानी करत को तवील करूं, लेकिन वहां बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। यानी औरतें मस्जिद में आती थी, औरतें जमात में थी, बच्चे घर में थे, और अगर नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी करते तो औरतों को ज्यादा देर रुकना पड़ता तो बच्चों को तकलीफ होती। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिज नमाज की आवाज सुनते थे, हदीस से साबित है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी की नमाज कानी हो सकती है? हो सकती है किसी की नमाज। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि वो खैरज नमाज की आवाज सुनते थे, और हमको क्या शैतान ने समझा नमाज गई से या नहीं पता। और अगर यहां कोई बात करता है तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जरा चुप करो, ये गया है नमाज पढ़े तो कैसी ओपन मांगत, भाई कान तो है इसकी कैसे नहीं सुने, कहते नहीं कहते पढ़ से नमाज से कैसी ओपन मांगत साहब। तो ये इबलीस जो है शैतान, ये ऐसी पटी पढ़ाता है। अब ख्याल का आना कोई परेशानी नहीं है, कैसे कैसे आए अब इसका इलाज क्या है? अब क्या इलाज है? ये ख्याल कौन दिल में डालता है? शैतान। और शैतान क्या है? दोस्त है दुश्मन, दुश्मन अदूव मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सारे ख्याल किसकी तरफ से? इब्लीस, और वो दुश्मन है। और दुश्मन को अगर सजा देनी है तो सबसे इससे परेशान, अगर ये परेशान हो गया, अगर इसका जवाब देने की कोशिश करेगा या कुछ और करेगा तो इब्लीस जीत गया। वो चाहता है इसको तवज्जो अपनी तरफ करे। अंग्रेजी वाले महावरा बहुत बोलते हैं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज टू इग्नोर, समझ गया? यानी ये पुलिस को लिफ्ट ही नहीं देना, कितने ख्याल आए तो अपना काम करता, परेशानी नहीं हो गया, जवाब नहीं देता, कोई इसमें असर नहीं होता। अब पुलिस इससे परेशान, अगर ये परेशान हो गया, अगर इसका जवाब देने की कोशिश करेगा या कुछ और करेगा तो इब्लीस जीत गया। वो चाहता है इसको तवज्जो अपनी तरफ करे। वो दो चीजें चाहता है, एक चीज तो चाहता है कि इसको परेशान करे, और दूसरी चीज चाहता है कि इसको तवज्जो अपनी तरफ करे। ऐसे में लिपटी जमा हुई ना, तुम तेग आजमा हम जिगर आजमाए, भाई लाओ कितने लाने हमें, अब क्या करेगा, अब बुरे ख्याल आए परेशान तो होगा, वहां से किसी और काम में मशगूल हो जाए, चाहे वो दुनियावी काम हो। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़कर, और कायदा है कि इंसान का जो दिमाग है एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता। इंसान का दिमाग एक वक्त में दो काम, अब ये उठा कुछ पढ़ने लगा या कुछ काम करने लगा और उसमें मशगूल हो गया और वो बात उसको लिखती नहीं दी, ना परेशान हो गया, ना अपने को अपने के लिए कमाल ईमान के लिए उसको नुकसान समझा। इस बात को अगर इंसान समझेगा तो इब्लीस के बहुत इनसे बचेगा, इख्तियारी और गैर इख्तियारी, जो चीज गैर इख्तियारी तौर पर है, अब एक शख्स अभी आजान हो गई, अब काम को छोड़ना, वजू करना, मस्जिद जाना, ये सब इख्तियारी हमारे, और वहां खड़ा होना और अल्लाह अकबर हाथ इधर रखना, ये सब क्या है, अब वहां नमाज में दिल लगना न लगना, ये गैर इख्तियारी है, ये इसके हाथ में नहीं, तो इसको गैर इख्तियारी के दर पर नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको इख्तियारी तौर से अगर दिल लग गया, एक और बात बताऊं, एक शख्स को नमाज में लज्जत आती है, क्या आती है, तो दूसरे को नहीं आती, कौन फायदे में, एक शख्स को नमाज में लज्जत मिलती है या इबादत में लज्जत मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। अब इस शख्स को खतरा है जिसको लज्जत मिलती है, इसको इस चीज का खतरा है, कहें तुम्हें ये कहा जाए तुमको लज्जत मिल गई है, तुमको तुमने फायदा ले लिया, यहां क्या जोड़ते हो, इसका ये इतमाल है। अगर ऐसा न कहा जाएगा कम से कम इसको, यानी जो उसको मिलेगा इसको इससे कम मिलेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा यहां मिला है, ये अल्लाह की ये है निजाम है, ये अल्लाह का निजाम है, खूब समझ लो कि इस शख्स को इस इबादत का एक घूणा तो मिल चुका है, उसको सारा बकाया है, और उसको लज्जत भी, अब ये नमाज पढ़ रहा है लज्जत मिल रही है, इसको क्या मुशक्कत, तो खुश है, अब इस बेचारे को मुशक्कत बर्दाश्त कर रहा है और फिर भी नमाज पढ़ता है, फिर भी इबादत करता है, दिल नहीं मानता है, नफस नहीं मानता है, फिर भी मशहूर करता है उसको, फिर भी करता है, ये तो ज्यादा काम करता है, ये शख्स तो ज्यादा काम करता, ये नहीं करता, और इसको एहतमाल ये है, अगर वो ना कम से कम इतना तो जरूर है कि इसको एक गुना यहां मिल चुका है, यही दुनियावी चीजों का भी है कि जिस शख्स को जितनी दुनिया मिलेगी, और ये आप हदीस की किताबों में देखो, बहुत से सहाबा आखिर उम्र में रोते थे, कहा क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो बशारते हैं कुछ बदरी सहाबा और कुछ दूसरी बशारते वाले सहाबा, तो आप क्यों रोते हो, कहा देखो हमने मुसाब को भी देखा, हजरत हमजा को भी देखा, ये वो सहाबा हैं जिनको दुनिया कुछ नहीं मिली, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नेक अमल किए, दुनिया यानी इतनी दुनिया नहीं मिली कि कफन पूरा नहीं था, जब कफन अगर सर मुबारक को ढांपते तो पैर खुलते, अगर पैरों को ढांपते तो सर खुलता, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सर मुबारक को ढांप लो और पैरों पर घास डाल दो, तो अब सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में रहे, अब उन्होंने कहा हमें कुछ दुनियावी चीजें भी मिल गई, हमें डर है अल्लाह ये न कहे हमने तो तुमको रिवार्ड दिया है, यहां क्या ढूंढते हो, यहां क्या सही तुम लोगों, इसी तरह से ये तो दुनियावी मामला हुआ, इसी तरह से इबादत में लज्जत, क्यों ऐसा मैं क्यों अर्ज करता हूं, इसलिए अर्ज करता हूं कि अक्सर शैतान ये पट्टी पढ़ाता है कि इबादत वो हुई जिसमें लज्जत मिले, वरना इबादत क्या, ये वसवसा दिल में डालता है, ये भी कोई इबादत हो गई। अरे लज्जत के पीछे कोई हाजी साहब लोग तो बड़े सब छोटे होते, हाजी साहब जिसमें बड़ा वो एक लतीफा बोलते थे, हजरत हाजी इमदादुल्लाह अली रहमत हजरत थानी अली रहमत के शेख, किसी ने कहा था हजरत इबादत में लज्जत नहीं मिलती, कहा यहां लज्जत कहां ढूंढते हो, लज्जत में किसी और चीज का बोला था वहां लज्जत होती है, ये इबादत है, यहां कहां लज्जत ढूंढते हो, यहां लज्जत नहीं, ये दर्द जिगर है, दर्द इबादत तो दर्द जिगर है, यहां लज्जत का क्या ढूंढना मामला। हाँ, और दूसरा इसके साथ बंदगी का मफहूम समझना चाहिए, अगर बंदगी का मफहूम समझेगा तो बस इसकी बिगड़ी बन गई मामला ठीक, तो फिर ये किसी चीज का मुतालबा नहीं करेगा, सिर्फ बंदगी पर इक्तफा करेगा, अगर बंदगी का मफहूम समझ गया, अगर बंदगी नहीं समझे तो लज्जत ढूंढता है, लज्जत ढूंढता है तो लज्जत नहीं चला जाएगा। अल्लाह ताला से मांगो, इधर उधर की मुतफरक बातें आ गई दिन में, कुछ जहन में नहीं था, आप लोगों की बरकत है, कुछ बुजुर्ग भी आज यहाँ मौजूद हैं हमारे मुफ्ती साहब के, इनकी भी कुछ तवज्जुहात रही होंगी, वरना मेरे कुछ बिल्कुल जहन खाली था, तो आप लोगों की बरकत से अल्लाह ताला ने कुछ कहलवाया, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अदा करे, दीन समझने की तौफीक अदा करे, सही मिजाज शरीयत का समझने की तौफीक।